एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की परतें खोलेंगे जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं विलियम डेलरिम्पल की बहुत ही अहम किताब दी एनार्की की।
नमस्कार। ये किताब उस अविश्वसनीय कहानी को सामने लाती है कि कैसे लंदन में बैठी एक मामूली सी दिखने वाली ट्रेडिंग कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने धीरे धीरे और बड़ी निर्ममता से भारत के इतने विशाल और समृद्ध भूभाग पर अपना शिकंजा कस लिया।
हाँ, और ये कोई मतलब किसी देश की सेना की फतेह नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉर्पोरेशन के साम्राज्य की कहानी है।
और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है ना, मतलब इतिहास की किताबों में दबी हुई कोई बात।
बिल्कुल नहीं। डेलरिम्पल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कॉर्पोरेट ताकत, वैश्विक अर्थव्यवस्था, शासन, ये जो मुद्दे उस समय उठे थे वो आज भी कितने प्रासंगिक हैं।
सही कहा। ये समझना कि कैसे एक अकेली मुनाफा कमाने वाली कंपनी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को न सिर्फ हिला सकती है बल्कि उस पर हावी भी हो सकती है, ये आज भी बहुत जरूरी लगता है।
हाँ, और इस कहानी को कहने वाले लेखक विलियम डेलरिम्पल, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, मशहूर इतिहासकार और लेखक हैं, और कई दशकों से भारत में ही रह रहे हैं और यहीं से काम कर रहे हैं।
हाँ, उनकी पकड़ भारत ब्रिटिश इतिहास पर और खासकर मुगल काल पर तो जबरदस्त है। उनकी पिछली किताबें जैसे व्हाइट मुगल्स और द लास्ट मुगल, इन्होंने उन्हें इस फील्ड में एक बहुत अहम आवाज बनाया है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है।
क्यों नहीं, बात इससे आगे है। उनकी एक खासियत है, वो है फारसी और उर्दू जबानों पर उनकी पकड़।
अच्छा।
हाँ, इससे उन्हें उन भारतीय और फारसी दस्तावेजों तक सीधी पहुंच मिलती है जिन्हें अक्सर पश्चिमी इतिहासकार, आप कह सकती, नजरअंदाज कर देते हैं।
तो मतलब कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है।
बिल्कुल, एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा गहरा नजरिया मिलता है, वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं।
सही का। और उनका लिखने का अंदाज, वो मुश्किल से मुश्किल ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक बातों को भी एक कहानी की तरह बुन देते हैं। मतलब किताब अकेडमिक है पर पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हो।
हाँ, और वो बड़े आराम से साम्राज्यवादी दौर के जो मिथक हैं उनको तोड़ते चलते हैं।
तो इस किताब का सबसे बड़ा दावा क्या है? ये उस जानी पहचानी कहानी को सीधी चुनौती देती है कि भाई ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे योजना बनाकर भारत पर कब्जा किया।
हाँ, डेलरिम्पल का तर्क इससे एकदम उलट है। वो कहते हैं कि ये किसी राष्ट्र की विजय ही नहीं थी,
तो फिर क्या था?
ये एक बेरहम मुनाफे की भूखी कॉरपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी का सोचा समझा अधिग्रहण था, कॉर्पोरेट टेकओवर।
कॉर्पोरेट टेकओवर, इतिहास का शायद सबसे बड़ा और विनाशकारी कॉर्पोरेट टेकओवर।
बिल्कुल। डेलरिम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी को एक खतरनाक हद तक बेगाम, मतलब अनरेगुलेटेड, सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी की तरह दिखाते हैं।
और किताब इसी हैरान करने वाले सवाल का जवाब ढूंढती है ना,
बिल्कुल,
कि लंदन के एक छोटे से दफ्तर से चलने वाली ये प्राइवेट कंपनी,
हाँ,
उस विशाल और दौलतमंद मुगल साम्राज्य को जो उस वक्त दुनिया की जीडीपी का करीब चौथा हिस्सा था, उसी लूटने और उस पर हावी होने में कैसे कामयाब हुई, ये सोचना भी अजीब है।
हाँ, और इसका जवाब डेलरिम्पल के हिसाब से उस दौर की अराजकता में छिपा है, मतलब जो पॉलिटिकल उथल पुथल थी।
द एनार्की जैसा किताब का नाम है।
बिल्कुल। उनका तर्क है कि ईआईसी ने मुगल सत्ता के कमजोर पड़ने के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली, जो बिखराव हुआ, उसका भरपूर फायदा उठाया।
अच्छा।
अपनी प्राइवेट आर्मी, बेहतर हथियार और जबरदस्त पैसे की ताकत, इन सब का इस्तेमाल करके उसने बड़ी चालाकी से भारतीय शासकों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया।
मतलब डिवाइड एंड रूल।
हाँ, वही, ये दुनिया का पहला बड़ा कॉर्पोरेट तख्तापलट था। ये किताब असल में कॉर्पोरेट इतिहास है जिसे हम अक्सर साम्राज्य के इतिहास के लिबास में देखते आए हैं।
चलिए जरा कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 17वीं सदी, 18वीं सदी की शुरुआत, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हैसियत थी?
तब तो कुछ खास नहीं, वो मुगल दरबार में व्यापार करने की इजाजत मांगने वाले याचक जैसे थे, अर्जी लगाते थे।
डेलरिम्पल बताते हैं कि उस वक्त मुगल साम्राज्य कितना ताकतवर था, कितनी शानो शौकत, कितनी दौलत थी।
हाँ, उसके सामने ईआईसी तो महज एक छोटी सी कंपनी थी। ये जो शुरुआती पावर इम्बैलेंस है, ये कहानी को और भी ज्यादा नाटकीय बना देता है।
किसने सोचा होगा कि ये मामूली व्यापारी एक दिन बादशाहों के बादशाह बन बैठेंगे?
सही कहा।
लेकिन फिर हालात बदलने लगे?
हाँ, बदले। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। उसके बाद मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वो अंदर से कमजोर होकर बिखरने लगा।
और इसी बिखराव को किताब में दी अनार्की कहा गया है।
बिल्कुल। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब क्षेत्रीय ताकतें अब स्वतंत्र होने लगीं। मराठे एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। फिर 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ दिल्ली पर।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा झटका था।
बहुत बड़ा। उसने दिल्ली को लूटा और मुगल सत्ता की इज्जत बिल्कुल खाक में मिला दी। तो ये जो उथल पुथल थी, जो पावर वैक्यूम बना, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी।
और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, बंगाल का तख्ता पलट, है ना?
हाँ बिल्कुल। ये वो वक्त था जब ये व्यापारी शासक बन बैठे। साल थे 1756 से 1765 के बीच।
और कहानी के केंद्र में दो लोग, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला।
हाँ, प्लासी की लड़ाई 1757, उसका जिक्र तो सबने सुना है, लेकिन डेल रिम्पल जोर देकर कहते हैं कि ये कोई आमने सामने की जंग थी ही नहीं।
अच्छा,
ये तो क्लाइव की एक सोची समझी साजिश थी। उसने नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। मैदान में लड़ाई तो बस नाम की हुई।
समझ गया। तो प्लासी अगर एक धोखा था, तो बक्सर की लड़ाई 1764 का क्या?
हाँ, बक्सर अलग थी। वो कंपनी की एक असली सैन्य जीत थी। उसमें कंपनी की सेना ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के हटाए गए नवाब की मिलीजुली फौजों को हराया।
और इसी जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि 1765।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दस्तावेज है वो। उसके तहत कमजोर पड़ चुके मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी।
दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार।
बिल्कुल। अब सोचिए, इस एक कदम ने कंपनी को रातों रात एक व्यापारिक संस्था से एक सॉवरेन पावर, एक संप्रभु शक्ति बना दिया। अब उनके पास अपनी फौजी ताकत बढ़ाने और युद्ध लड़ने के लिए बेहिसाब पैसा था। बंगाल का पूरा राजस्व उनके हाथ में आ गया।
और ये दीवानी मिलना बंगाल के लिए कैसा साबित हुआ?
क़यामत लाने जैसा। डेली रिम्पल इसे एसेट स्ट्रिपिंग कहते हैं।
एसेट स्ट्रिपिंग मतलब?
मतलब जैसे किसी फलते फूलते बगीचे से आप सारे फल फूल और यहाँ तक कि जड़ें भी नोच ले जाएं, सिर्फ अपनी टोकरी भरने के लिए, भले ही बगीचा बंजर हो जाए।
बाप रे।
कंपनी के अफसरों ने बेरहमी से टैक्स वसूला। सदियों से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा था, उसे तहस नहस कर दिया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा निचोड़कर लंदन भेजना, अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बनाना।
और इसी लालच और बदइंतजामी का नतीजा था 1770 का वो भयानक बंगाल अकाल।
हाँ, अंदाजा है कि लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, उस वक्त की आबादी का करीब 1/3 हिस्सा। और दिल दहलाने वाली बात यह है कि कंपनी ने अकाल के सबसे बुरे दौर में भी टैक्स वसूली कम नहीं की।
ये तो अमानवीय है।
बिल्कुल। इसी दौर में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने। वो एक पेचीदा किरदार थे। एक तरफ उन्होंने प्रशासन सुधारने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ उन पर खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और बाद में लंदन में उन पर महाभियोग, इंपीचमेंट भी चला।
तो क्या ब्रिटिश सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा था?
पता चल रहा था। अब ब्रिटिश संसद भी कंपनी की बढ़ती ताकत और उसके कारनामों से थोड़ी चिंतित होने लगी थी। उसे काबू में करने के लिए कुछ शुरुआती कानून बनाने की कोशिशें भी हुईं, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह।
अच्छा,
तो बंगाल से जो पैसा लूटा, उसका इस्तेमाल फिर कहाँ हुआ?
उसका इस्तेमाल कंपनी ने भारत के दूसरे हिस्सों में अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए किया। 1780 से 1803 के बीच कंपनी ने दक्षिण और पश्चिम भारत में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी।
जैसे मैसूर के साथ युद्ध।
हाँ, खासतौर पर मैसूर। पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान, जिन्हें शेरे मैसूर कहा जाता है, उन्होंने कंपनी को कड़ी टक्कर दी। डेलरिम्पल टीपू सुल्तान को EIC का सबसे ताकतवर और आप कह सकती हैं इनोवेटिव दुश्मन बताते हैं।
इनोवेटिव कैसे?
टीपू ने फ्रांसीसियों से मदद ली, अपनी सेना को यूरोपियन तर्ज पर ट्रेन किया, रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया, जो उस वक्त बहुत आगे की बात थी। लेकिन आखिरकार 1799 में सेरिंगापट्टम की घेराबंदी में उनकी हार हुई और वो लड़ते हुए मारे गए।
टीपू सुल्तान के बाद
एक थे, लेकिन उनमें आपसी फूट बहुत थी।
हाँ, वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, सब अलग अलग थे।
बिल्कुल।
अलग अलग सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे।
उस वक्त के गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेसली ने इसी फूट का फायदा उठाया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में कंपनी को निर्णायक जीत मिली। इस हार ने मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी और कंपनी का नियंत्रण मध्य और उत्तरी भारत के बड़े इलाकों पर हो गया।
और फिर आया साल 1803, दिल्ली पर कब्जा।
हाँ, वो लम्हा जिसका सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा है। कंपनी की फौजें मुगल राजधानी दिल्ली में दाखिल हुईं। कहने को तो वो बूढ़े, अंधे और लाचार हो चुके बादशाह शाह आलम द्वितीय को मराठों के चंगुल से बचाने आए थे,
लेकिन असल में
हकीकत ये थी कि अब मुगल बादशाह खुद ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन पाने वाला कैदी बन गया था।
सोचिए जरा, वो कंपनी जो लगभग दो सदी पहले जहांगीर के दरबार में गिड़गिड़ाकर व्यापार की इजाजत मांगने आई थी,
हाँ, अब मुगल तख्त की असली मालिक बन बैठी थी। ये कितना बड़ा उलटफेर था।
बिल्कुल।
तो इस पूरी कहानी से कुछ बहुत अहम बातें, कुछ थीम्स उभर कर सामने आती हैं। पहली, जो आपने पहले भी कही, विजय का कॉरपोरेट चरित्र।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये किसी ब्रिटिश राष्ट्र की, मतलब ब्रिटिश सरकार की सुनियोजित विजय नहीं थी। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अधिग्रहण था।
और वो कंपनी जवाबदेह किसके प्रति थी?
हजारों मील दूर लंदन में बैठे अपने शेयर होल्डर्स के प्रति। युद्ध लड़ने हैं या नहीं, टैक्स कितना लगाना है, ये सारे फैसले मुनाफे को देखकर लिए जाते थे, न कि किसी राष्ट्रीय गौरव या नीति के तहत।
तो ये उपनिवेशवाद को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था।
नहीं, ये एक निर्मम बिजनेस वेंचर था, क्रूर।
दूसरा बड़ा विषय आपने बताया, युद्ध का निजीकरण।
हाँ, ये भी बहुत अहम है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया वो एक तरह से वॉरफेयर का बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन था।
उनकी अपनी विशाल प्राइवेट आर्मी थी,
ब्रिटिश आर्मी से भी बड़ी। उस वक्त ब्रिटिश सेना से भी दुगनी बड़ी। और इस सेना का खर्च कोई सरकार नहीं उठाती थी, बल्कि कंपनी खुद अपने कमाए हुए राजस्व से, मतलब भारतीय राजस्व से उठाती थी।
तो ये प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेस के खतरों पर एक ऐतिहासिक केस स्टडी है।
बिल्कुल। क्या आज की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों में हमें EIC की परछाई दिखती है? ये सोचने वाला सवाल है।
तीसरा विषय है राजनीतिक बिखराव का शोषण, वो अराजकता वाली बात।
हाँ, ये बात गौर करने लायक है कि कंपनी ने किसी एक ताकतवर एकजुट भारत को नहीं हराया, बल्कि उसने मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने से जो राजनीतिक खालीपन और अंदरूनी लड़ाइयां पैदा हुई थीं, उनका फायदा उठाया।
वही फूट डालो और राज करो वाली रणनीति।
हाँ, कंपनी इसमें उस्ताद बन गई थी।
चौथा विषय जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, वो है भारतीय फाइनेंसरों और सैनिकों की भूमिका।
हाँ, ये जानना हैरान करता है, EIC की जीत भारतीय मदद के बिना मुमकिन ही नहीं थी। बंगाल के जगत सेठ जैसे उस जमाने के सबसे बड़े बैंकरों ने क्लाइव की साजिशों को पैसा दिया,
फाइनेंस किया।
हाँ, कंपनी की फौज, उसमें ज्यादातर तो भारतीय सिपाही ही थे, जिन्हें सिपॉय कहा जाता था।
तो विडंबना देखिए, भारत की फतह काफी हद तक भारतीय पैसे और भारतीय सैनिकों के दम पर ही लड़ी गई,
जिसका निर्देशन लंदन में बैठा एक विदेशी कॉरपोरेशन कर रहा था।
और पांचवा अहम मुद्दा है धन की सुनियोजित निकासी, वो एसेट स्ट्रिपिंग।
हाँ, कंपनी ने सिर्फ टैक्स ही नहीं वसूला, बल्कि बंगाल की दौलत को सिस्टमैटिकली लूटा। यहाँ के फलते फूलते उद्योगों को तबाह किया, जैसे ढाका का विश्व प्रसिद्ध मलमल का कारोबार।
हाँ, वो तो पूरी तरह खत्म ही हो गया।
हाँ, और ये सारा पैसा जहाजों में भर भर कर ब्रिटेन भेजा गया। डेलरिम्पल जैसे इतिहासकार मानते हैं कि भारत से गई इसी दौलत ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड करने में अहम भूमिका निभाई।
और भारत का क्या हुआ?
भारत का अपना उद्योग खत्म होता गया और वो गरीबी के कुचक्र में फंसता चला गया।
वाकई, ये किताब ऐसे विचारों से भरी है जो झकझोरते हैं। कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती हैं।
हाँ, जैसे ये विचार, ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास की सबसे भयानक चेतावनी बनी हुई है कि कॉरपोरेट शक्ति का दुरुपयोग कैसे हो सकता है और कैसे एक अकेली खतरनाक रूप से अनियमित कंपनी एक राज्य को कमजोर कर सकती है।
ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, आज के दौर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी एक सबक है इसमें।
और ये बात भी बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, ये एक देश द्वारा दूसरे देश पर विजय नहीं थी, बल्कि ये एक विशाल और परिष्कृत उपमहाद्वीप पर एक प्राइवेट कंपनी का कब्जा था, जो केवल 5000 मील दूर एक बोर्डरूम में अपने शेयर धारकों के प्रति जवाब देती।
हाँ, ये बार बार उस बुनियादी फर्क पर जोर देता है, कब्जे की प्रकृति राष्ट्रीय नहीं कॉरपोरेट थी, इरादे और तरीके सब अलग थे।
और कंपनी की असल ताकत, उस पर ये विचार, कंपनी ने 4 दशकों से कुछ अधिक समय में लगभग 2 लाख पुरुषों की एक निजी सुरक्षा बल तैयार कर ली थी। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे परिष्कृत निजी सेना थी, और इसी ने मुट्ठी भर व्यापारियों को एक उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दी।
मतलब साफ है, कंपनी की असली ताकत उसकी बंदूकें और उसकी प्राइवेट आर्मी थी, जिसे उसने भारतीय राजस्व से ही खड़ा किया था।
और शायद सबसे तकलीफदेह नतीजा इस पंक्ति में झलकता है, कंपनी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक भारत को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक में बदलने में सफल रही थी।
हाँ, ये महज एक वाक्य नहीं, ये उस पूरी प्रक्रिया का सार है जिसने भारत की आर्थिक तकदीर को पलट कर रख दिया। व्यवस्थित शोषण का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?
तो ये ऐतिहासिक सबक आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। पहला, आधुनिक कॉरपोरेट ताकत को समझने में मदद मिलती है।
हाँ, AIC की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बड़ी कंपनियां राजनीतिक ताकत हासिल कर सकती हैं, सरकारों पर असर डाल सकती हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां लॉबिंग या दूसरे तरीकों से अपने हक में नीतियां बनवाती हैं।
तो ये कॉर्पोरेट जगत के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित खतरों के प्रति आगाह करती है।
बिल्कुल।
दूसरा, बिलगाम पूंजीवाद के खतरे।
हाँ, EIC का उदाहरण चीख चीख कर कहता है कि जब मुनाफा इंसानियत और भलाई से ऊपर हो जाता है तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। ये कॉरपोरेट जिम्मेदारी और सरकारों द्वारा सख्त निगरानी की जरूरत पर बल देता है।
बिना नैतिक लगाम के मुनाफे की अंधी दौड़ तबाही ला सकती है।
बिल्कुल।
तीसरा, फूट डालो और राज करो की रणनीति को पहचानना।
हाँ, ये कोई गुजरे जमाने की तरकीब नहीं है, ये आज भी उतनी ही कारगर है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि कैसे बाहरी ताकतें स्थानीय झगड़ों और दुश्मनी को हवा देकर अपना फायदा निकालती हैं। इतिहास का ये सबक हमें ऐसी चालों के प्रति ज्यादा चौकन्ना बनाता है।
और चौथा, ग्लोबलाइजेशन पर एक आलोचनात्मक नजर डालना।
हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें वैश्वीकरण का एक शुरुआती लेकिन बेहद शोषक चेहरा दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज का वैश्विक व्यापार और निवेश हमेशा सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण होता है?
कहीं आज भी शक्ति का वैसा ही असंतुलन तो नहीं है जैसा था?
ये सवाल पूछना जरूरी है।
हाँ, बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि बेलगाम कॉरपोरेट ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली व्यापारिक कोठी से शुरू होकर एक जालिम कॉरपोरेट हुकूमत बनने तक का सफर।
हाँ, वो दिखाता है कि कैसे सत्ता, खासकर जब वो मुनाफे की हवस से जुड़ी हो, इंसानियत को भुला देती है।
और इसने भारत पर कब्जे की हमारी समझ को ही बदल दिया है। ये राष्ट्रीय नहीं, कॉरपोरेट था।
हाँ, और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है इतिहास की जटिलता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी।
बिल्कुल, ये सिर्फ गोरे बनाम भूरे की सीधी सादी लड़ाई नहीं थी। इसमें भारतीय सहयोगी थे, भारतीय पैसा लगा था, लाखों भारतीय सैनिक लड़े थे और उतना ही जबरदस्त भारतीय प्रतिरोध भी था।
और सबसे अहम बात, ये अतीत हमारे आज के लिए एक चेतावनी है।
हाँ, EIC की कहानी हमें आज की ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनियों, उनकी बढ़ती शक्ति और उनकी जवाबदेही के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध ऋतित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।